मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 30 मई 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्रिय साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और साथी मित्रों, इसी क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं राजकुमार आर्यन, आप पटना बिहार से हैं, रोशनी सिंह सीधी मध्य प्रदेश से हैं और आशुतोष कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो राजकुमार, रोशनी और आशुतोष, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, स्वागत के इस शुरुआत के बाद अब मैं बधाई देना चाहूंगा अपने उन 2 नौजवान साथियों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्री क्वालिफाई किया है। इसमें एक स्टूडेंट हैं शालिनी, जो लखनऊ से हैं और हमारे सेकेंड बैच की स्टूडेंट रही हैं, और दूसरे स्टूडेंट हैं आनंद कुमार, जो वाराणसी से हैं और जो थर्ड बैच के स्टूडेंट रहे हैं। इसमें से शालिनी ने इससे पहले जो यूपीपीएससी का जो लोअर एग्जामिनेशन होता है उसका भी प्री क्वालिफाई किया था। तो शालिनी और आनंद, आप दोनों को मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और साथ ही हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों को मेंस और इंटरव्यू में भी सफलता मिले, और न केवल सफलता ही मिले बल्कि सर्वोच्च सफलता प्राप्त हो। हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दोस्तों, आनंद कुमार ने जो अपनी सफलता के बारे में जो मेल भेजा है वह मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये हमारे थर्ड बैच के स्टूडेंट हैं, वाराणसी से हैं। इन्होंने लिखा है कि सर, मुझे यह सूचित करते हुए अत्यंत खुशी महसूस हो रही है कि मैंने उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2016 में सफलता प्राप्त की है। मेरी इस सफलता में सर आपका क्लासेस एवं डेली ऑडियो लेक्चर स्पेशल ऑडियो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही एएफए की पूरी टीम तथा मेरे बैचमेट्स की शुभकामनाओं का भी अहम रोल रहा है। मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए मैं आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस मेल को लिखते समय मैं भावनाओं के आवेग में हूं, संभव है कि कुछ त्रुटियां रह गई हों, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आनंद कुमार सेठ, एएफई थर्ड बैच। तो मित्रों, खासकर आनंद कुमार का जो मैंने आपको मेल पढ़कर सुनाया है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ये उनका बड़प्पन है, आभार व्यक्त करने का अपना तरीका है। जो भी स्टूडेंट सफलता हासिल करता है, सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होता है तो उसके स्वयं का होता है और उसके परिवार के सदस्यों का होता है, क्योंकि तैयारी के दौरान जो सारी जो मुसीबतें होती हैं या जो सुविधाएं चाहिए, जो परिस्थितियां और वातावरण चाहिए, वो सब उनके परिवार के सदस्य ही प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए नो डाउट कि स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य भी उसी तरह से अभिनंदन के योग्य होते हैं, और मैं उन सब का भी अभिनंदन करता हूं। लेकिन मित्रों, जहां तक किसी भी इंस्टीट्यूशन का सवाल है या इंडिविजुअल का सवाल है, डेफिनेटली ये तो होता है कि उससे एक दिशा मिलती है, गाइडेंस मिलता है, कैसे यात्रा शुरू करनी चाहिए, किस किस तरीके से यात्रा पूरी करनी चाहिए और कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है। या तो स्टूडेंट को खुद उसके बारे में मालूम होता है, और यदि मालूम नहीं होता है तो डेफिनेटली फिर यदि कोई ऐसा संस्थान या व्यक्ति या कोई भी दूसरा साधन उसे मिल जाता है तो उसका भी उसमें योगदान होता है। तो सच पूछे तो चाहे वो हमारी एएफए की टीम हो, चाहे यह डेली ऑडियो हो, क्लासेस हो, स्पेशल ऑडियो हो, ये एक तरह से फ्रेंड्स आप सबको दिए जाने वाला इनपुट है, अपने आप में सब कुछ नहीं है। यह दावा करना बिल्कुल गलत होगा। मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी होगा इसी के ही वजह से होगा, इसी के जरिए होगा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। कभी कभी तो सच पूछे तो मुझे यह भी लगता है कि यदि कोई स्टूडेंट सही मायने में पूरी ईमानदारी के साथ 15 दिन की क्लासेस अटेंड कर लेता है, अगर वो इसकी जरूरत समझता है तो, या फिर क्लासेस के साथ साथ वो डेली ऑडियो से भी जुड़ा हुआ है, या क्लासेस नहीं कर किया हुआ है लेकिन वो लगातार डेली ऑडियो से जुड़ा हुआ है। और बट नेचुरली कि जो स्टूडेंट क्लासेस करते हैं उन्हें फिर साल भर तक वीकली स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किया जाता है, तो ये सारी चीजें मिलकर के उन्हें काफी मजबूत बना देती है। इन सब में इतनी ताकत है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, धक्का देने के लिए, आपकी गति को बढ़ाने के लिए और दिशा को सही रखने के लिए, मुझे लगता है कि शायद बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो शालिनी और आनंद, हाँ ये जरूर है कि एकेडमी ने आपकी इस सफलता में भूमिका निभाई है और उसे आप दोनों ने स्वीकार किया है, तो उसके लिए मैं एकेडमी की ओर से आप दोनों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट पर। मैंने आप लोगों से विषय मांगे थे कि आप लोग अपने विषय बताएं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा विषय नहीं मिल पाए हैं। सिर्फ एक स्टूडेंट का से मुझे विषय मिला है और मैं उसी विषय को लेकर के आज आप लोगों से थोड़ी बहुत अपनी बातें शेयर कर रहा हूं, जो मेरी अपनी समझ में है, जो मुझे ठीक लगती है। वो विषय है दोस्तों कि एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर निगेटिविटी से कैसे बचा जाए, ये उनका सवाल है और आज का हमारा विषय भी यही है कि निगेटिविटी से कैसे बचा जाए। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों से, स्पेशली सन 2000 के बाद से, यानी कि लिबरलाइजेशन के दौर को शुरू हुए 10 साल करीब हुए और 10 साल के बाद से जो दौर शुरू हुआ है उसमें जो लाइफ मैनेजमेंट का पार्ट लगातार फैलता चला गया है। आप देखेंगे कि लगभग इसी के आसपास शिवखेड़ा बड़ी तेजी से उभरे और उसके बाद से फिर लाइफ मैनेजमेंट पर किताबें, इंग्लिश की किताबें हिंदी में ट्रांसलेट होने लगी, लोग हिंदी में ओरिजिनली लिखने भी लगे, इस पर जगह जगह सेमिनार होने लगे, वर्कशॉप होने लगी, इंस्टीट्यूशंस में लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए जाने लगे। तो मुझे कभी कभी लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा कारण शायद यह रहा हो कि उस लिबरलाइजेशन के 10 साल के दौरान जो हमारे समाज की संरचना में जो परिवर्तन हुआ, हमारे मानसिकता पर जो दबाव बना, या पूरा का पूरा जो एक वातावरण निर्मित हुआ, मनोवैज्ञानिक वातावरण निर्मित हुआ, उन सबको देखते हुए ये जरूरी लगने लगा कि कुछ ऐसी बातें स्टूडेंट्स को, यंग जनरेशन को, एग्जीक्यूटिव्स को, काम करने वाले को या देश के नागरिकों को बताई जानी चाहिए। उसी दौर में ही ये जो सकारात्मक और नकारात्मक सोच की बात बहुत जबरदस्त रूप से शुरू हुई और ये मैं देख रहा हूं कि लगातार बढ़ती चली जा रही है। मित्रों, हम लोगों ने जो अब अपने कैरियर की शुरुआत की थी वो 1970 के आसपास का दौर था, जब सही मायने में थोड़ी सी मेच्योरिटी के साथ वो वक्त हम जैसे लोगों को याद आता है और इसके बाद लगभग वो समझ लीजिए 70 से शुरू होकर के 15-20 साल तक वो दौर चला। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि हम लोगों को इस तरह की चीजों की कभी कोई जरूरत महसूस होती थी, कोई किताबें भी ऐसी नहीं थी और सच पूछे तो जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। इस रूप में हम लोगों के पास जो कुछ भी थोड़ी बहुत चीजें थी तो वो कहीं नीति शास्त्र हो गई, पंचतंत्र टाइप की कहानियां हो गई, रामायण महाभारत की कथाएं हो गई, है ना, हमारे मिथक हो गए, कुछ नीति कहानियां हो गई, नीति के दोहे हो गए, यही सब चीजें थी जिसे हम एक तरीके से लाइफ मैनेजमेंट मानकर चलते थे। और उसका जो जोर होता था दोस्तों, ये जो मैंने अभी जितने भी उदाहरण आपको बताए, इनका जोर जीवन की सफलताओं पर नहीं था, इनका जोर जीवन की गुणवत्ताओं पर था कि आप कैसे बहुत ही अच्छा, शांतिपूर्ण, सुंदर, मनोहारी, अच्छा जीवन जिए। उसका संदर्भ अच्छे जीवन से था, सफल जीवन से नहीं था। अब जो सारा का सारा संदर्भ हो गया है, उनका अच्छे जीवन गुणवत्ता उसमें खत्म हो गई है। अगर गुणवत्ता है भी तो उसको सिनोनिमस बना दिया गया सफल जीवन, सक्सेसफुल लाइफ, हाउ सक्सेस यू आर इन योर लाइफ। और ये सफलता का मापदंड क्या है? फिर सफलता का मापदंड है कि आप कितनी बड़ी नौकरी में हैं, आप कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आप साल भर में कितना कमा रहे हैं, किस शहर में किस शहर के किस एरिया में आपके पास कितना बड़ा मकान है। अब कोई गाड़ी की बात नहीं करता, गाड़ी तो सबके पास होती है, फिर ये होता है कि कौन सी गाड़ी है। ये सारी चीजें सफलता के मापदंड बन गई हैं, ये कसौटियां हैं, ये उसके एलिमेंट्स हैं। इनको कैलकुलेट कर लीजिए तब आपको पता लगेगा कि हाँ अब आप सफल जीवन जी रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सफलता के इन मापदंडों को एक एक करते पाते 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 और सच पूछिए तो हम अपना हेल्थ बर्बाद कर चुके होते हैं, हम अपने रिलेशनशिप को खो चुके होते हैं, सब कुछ कह लीजिए कि काफी कुछ हम उसकी कीमत चुका चुके होते हैं, तब फिर हमें सफलता मिलती है। जब ये पूरा का पूरा वातावरण आया तो निश्चित रूप से फिर इन चीजों की जरूरत थी कि ऐसी बातें की जाए, लोगों को बताया जाए, लोगों की सोच जो शायद भटक गई है या सही तरीके से नहीं बन पा रही है उसको सही किया जाए। तो इसीलिए आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं कोई अभी के जो संदर्भ हैं, अभी की जो जरूरत है, इसकी आलोचना कर रहा हूं। मैं बिल्कुल आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि इसकी जरूरत है, और जरूरत है तभी तो मैं खुद भी लाइफ मैनेजमेंट पर किताबें लिख रहा हूं। मेरे डेली ऑडियो में मैंने 10 मिनट 12 मिनट का लाइफ मैनेजमेंट का हिस्सा रख रखा है। जो हमारी क्लासेज लगती हैं उसमें भी मैं 10-15 मिनट लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बातें करता ही करता हूं, इसलिए ऐसा नहीं कि मैं इसका विरोधी हूं। लेकिन जो वातावरण बना है, मैं उस वातावरण की बात कर रहा हूं, और खासकर मैं इसलिए जानबूझकर आज मैंने इस वातावरण की बात की है ताकि आप समझ सकें कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों है। इसलिए मित्रों, अगर आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ रही है तो आप अपने आप को अकेला मत माने, न समझें कि आपके साथ ही कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपकी सोच और समझ के साथ ही कुछ प्रॉब्लम है, या पूरा का पूरा समाज, आपका परिवार, आपके दोस्त, देश, दुनिया आपकी ही विरोधी है, बाकी सब का वो साथ दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सच पूछिए तो कुछ उसी तरीके से है जैसे कि जब प्रदूषण फैलता है तो प्रदूषण फिर सबको प्रभावित करता है, उससे कोई बच नहीं सकता। उससे जो बचना चाहेगा तो फिर वो अपने अपने तरीके निकालेगा कि कोई अपने नाक पर रुमाल बांध लेगा, कोई कार में चलेगा तो अपने ग्लास चढ़ा करके रखेगा, फिर वो अपने अपने तरीके अपनाएगा। अदरवाइज ये प्रदूषण प्रभावित तो सबको करेगा ही। लगभग यही स्थिति अभी हो गई है, और इस पूरे के पूरे वातावरण के कारण जो एक मनोवैज्ञानिक जो स्थितियां बन रही हैं, सच पूछे तो इसका सबसे बड़ा जो हिस्सा आज हो गया है वो है सकारात्मकता और नकारात्मकता, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी। यानी कि जब आपको ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो ये पॉजिटिविटी है। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बेकार हूं, तब ये कहलाने लगती है निगेटिविटी, राइट? तो आज चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से बात करनी चाहिए, तो मैं कल तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन आप लोगों से मेरा अर्ज है कि आप लोग भी अपने विषय मुझे भेजें, वो विषय लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं ये सोचना आपका काम नहीं है, ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे इस पर निर्णय लेने का अधिकार दीजिए, यह अधिकार मैं आप लोगों से चाहूंगा। लेकिन आप लोग कम से कम अपना काम करें कि अपनी तरफ से मुझे विषय सुझाएं ताकि मैं उन विषयों पर बारी बारी से जरूरत के हिसाब से बात कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने केवल एक पृष्ठभूमि सकारात्मक और नकारात्मक सोच के बारे में आपको बताई है, कल मैं इसी टॉपिक को फिर आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि नो डाउट कि कारण चाहे जो भी हो लेकिन यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आप जैसे युवाओं के लिए जो अभी एक तरह से कैरियर मेकिंग के दौर से गुजर रहे हैं उनके लिए तो और भी निहायत जरूरी है और महत्वपूर्ण है। इस पर हम लोग आगे कल बातें करेंगे, बल्कि मैं चाहूंगा कि निगेटिविटी को लेकर के आप लोग यदि और अपनी कुछ समस्याएं मुझे लिख करके भेजें कि सर इस पॉइंट को भी उठाएं, इस पॉइंट को भी उठाएं, इस पॉइंट को भी उठाएं, तो बेहतर होगा कि मैं और इसे अच्छे तरीके से आपको बता पाऊंगा और डिटेल में बता पाऊंगा। और यदि आप लोगों से मुझे और पॉइंट्स मिले तो हो सकता है कि कल के साथ ही साथ इसे हम एक सेशन दो सेशन के लिए और एक्सटेंड कर दें, क्योंकि जो मेरा उद्देश्य होता है या कह लीजिए मेरा जो सिद्धांत है, किसी चीज को निपटाना नहीं है। मेरा सिद्धांत है कि अगर कोई चीज हाथ में ली है तो फिर उसे जितने भी बेहतर तरीके से अपनी क्षमताओं के अनुसार किया जा सके वो किया जाना चाहिए। तो कोई ताज्जुब नहीं कि इसे हम तीन सेशन, चार सेशन, पांच सेशन तक ले जाएं, डिपेंड करेगा कि आप लोग मुझसे कितना कहलवा पाते हैं। ये भी कह लीजिए कि आपके लिए एक, आप सबके लिए एक चैलेंज है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। आप जानते ही हैं हम लोग पहले भी इस तरह की बातें करते रहे हैं कि चूंकि सैटरडे और संडे छुट्टी के दिन होते हैं, कैबिनेट की बैठक नहीं होती, सरकार बंद सी होती है, सरकारी दफ्तर बंद होते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर बहुत ज्यादा खबरें नहीं बन पाती हैं, इसीलिए न्यूज में भी कुछ विशेष नहीं होता है। लेकिन चूंकि सोमवार का दिन है और हमें डिस्कस करना है, कुछ न कुछ बातें तो करनी है लेकिन फालतू बातें नहीं करनी है, तो ये क्षमता केवल आप पर डिपेंड करती है कि आप उस न्यूज में से अपने लिए निकाल क्या पाते हैं। देखिए मित्रों, कम से कम मैं तो इस विचार का हूं, आप मुझे गलत ठहरा सकते हैं, कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती, सिर्फ हमारे एक तीक्ष्ण दृष्टि की जरूरत होती है, वह तेज दृष्टि, वह बेधक दृष्टि जो वहां से अपने लिए चीजें निकाल कर ले आए, और वो चीजें होती हैं और उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी व्यर्थ चीज नहीं होती, मतलब मैं ये मानकर चलता हूं। इसीलिए मुझे लगता है कि चाहे आप कुछ भी पढ़ें, चाहे आप कुछ भी सुने, चाहे आप कहीं भी जाएं, कुछ भी देखें, उनका कुछ न कुछ उपयोग होता है। आवश्यक है उपयोग किए जाने की कला का होना, वो हमारे पास है या नहीं है। मित्रों, कल के न्यूज में आपने सुना जो एक बड़ी खबर थी और काफी देर तक वो खबर चलती रही, और वो था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने 2 साल के कार्यकाल के बारे में एक तरीके से, जिसे वो कहते हैं कि मैं अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को दे रहा हूं कि 2 साल में मैंने क्या क्या किया है। राइट, बहुत सेक्टर हैं सरकार के और आप देख रहे हैं कि अलग अलग मिनिस्टर्स अपने अपने मंत्रालय के बारे में जानकारियां दे रहे हैं। कल दूरदर्शन के चैनल पर मैं देख रहा था कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हमारे प्रधान साहब जो हैं वो अपने मंत्रालय के बारे में बता रहे थे, और उसमें एक बहुत अच्छा उन्होंने बताया था कि उनका मंत्रालय खासकर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये बात बताई। तो हर मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो अपने अपने मंत्रालय के 2 साल के कामों की उपलब्धियां गिना रहे हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये ओकेजन है जिस पर आपका ध्यान होना चाहिए, और इसके लिए मैं आपको पहले सतर्क कर चुका हूं। अब कल देखिए जो प्राइम मिनिस्टर के न्यूज में जो हमें मिलती हैं, जिस पर हमारा ध्यान होना चाहिए और हमें उसे पकड़ लेना चाहिए सिविल सर्विस के एक सतर्क स्टूडेंट के रूप में। ज्यादातर न्यूज में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी की जो खबर ली गई है, प्रधानमंत्री जी तो बहुत लंबे समय तक बोले होंगे, है ना, बहुत लंबे समय तक बोले होंगे, उन्होंने अपनी सरकार के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग उपलब्धियों की भी चर्चा की होगी। लेकिन कल के न्यूज में जो केंद्रीय बिंदु था वह किसानों को लेकर था, जो न्यूज की मैं बात कर रहा हूं कि किसानों को लेकर क्या क्या सरकार ने पिछले 2 सालों में किया है। राइट, तो अब जब आप ये न्यूज सुनते हैं तब आपके दिमाग को थोड़ा सा एक्टिवेट होना चाहिए, मतलब अब आपको ये कह लीजिए कि इसमें वैल्यू एडिशन करना है। आपने न्यूज तो सुन ली, ठीक है, न्यूज से आपको कुछ चीजें मिल गई, लेकिन अब ये जो चीजें आपको मिली हैं, अब बहुत जरूरी है कि अब आप इन मिली हुई चीजों में वैल्यू एडिशन करें, इनकी कीमत बढ़ाएं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको लकड़ी का टुकड़ा दिया है, तो अब आप उस लकड़ी के टुकड़े के साथ मेहनत करके अपनी कारीगरी दिखा करके उसे एक खिलौने में बदल दें। तो लकड़ी का टुकड़ा मैंने आपको 50 रुपए में दिया था, और अब आपने अपनी क्षमताओं का उपयोग करके उस लकड़ी के टुकड़े को खिलौने में बदला और उसे 500 रुपए में अब आप बेच रहे हैं। तो 50 में खरीदा, 500 में बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि 450 रुपए का आपने इसमें वैल्यू एडिशन कर दिया, मूल्य को जोड़ दिया। ये क्षमता एक सिविल सर्विस के स्टूडेंट में होनी चाहिए। कि वो चीजें उठाता है, चीजें पढ़ता है, चीजें लेता है और लेने के बाद कैसे वह उसे अधिक कीमती बना देता है। और डेफिनेटली ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उस चीज को लेने के बाद उस पर सोच विचार करेंगे, और आपके सोच विचार करने के जो एंगल्स होंगे वो बड़े डिफरेंट एंगल्स होंगे, अलग अलग कोणों से, अलग अलग तरीकों से आप उसे सोचेंगे। जैसे आपने न्यूज में किसान के बारे में सुना, अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि क्या किसान हमारे सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और यदि है फिर आपके दिमाग में लगातार क्वेश्चंस कैसे आप रेज करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं उठाएंगे अपने दिमाग में तब तक आपका दिमाग उत्तर देने के लिए खड़ा होगा ही नहीं, सतर्क होगा ही नहीं। अगर आपको अपने दिमाग से कुछ उत्तर चाहिए तो पहले उसको प्रश्न तो उसकी तरफ उछालिए, तभी तो वो आपकी तरफ उत्तर उछालेगा। यदि किसान महत्वपूर्ण है तो फिर कितना महत्वपूर्ण है, राइट? फिर आपको पता लगेगा अच्छा ये इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर आप फिर प्रश्न करेंगे कि अच्छा ये इतना महत्वपूर्ण अगर है तो फिर किन किन एंगल से महत्वपूर्ण है। जैसे किसान तो अब एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है किसान। जहां जिस देश की 50% से अधिक आबादी जिस काम में लगी हुई हो, तो आप सोच करके देखिए कि उस आबादी की संख्या और उस काम का महत्व अपने आप में बता रहा है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब आप इस तरह के प्रश्न उठाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि अब आपको इसका उत्तर मिलेगा कहां से। ये नहीं कि आप इसका उत्तर हवा में सोच लेंगे, हां हमारे लिए किसान महत्वपूर्ण है, नहीं, आपको जो उत्तर मिलने हैं, आपके लिए जो फ्रेम है, जो फार्मूला है, या कह लीजिए कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट का एक निश्चित मैदान होता है, अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो बैडमिंटन के भी एक नाप तौल का एक मैदान है कि इसी के बीच में ही आपको खेलना है, अदरवाइज आउट हो जाएंगे। इसी तरह से जब आप सिविल सर्विस के बारे में तैयारी करते हैं तो उसका भी एक निश्चित मैदान है, एक फार्मूला है। वो फार्मूला कहां है, वो फार्मूला कौन सा है, यू शुड नो, वो जानना चाहिए आपको, और आप जानते हैं। दो फार्मूले हैं, जैसे लंबाई और चौड़ाई होती है, उसी तरह से एक फार्मूला है आपका सिलेबस जो यूपीएससी ने आपको दिया हुआ है। दूसरा जो आपका फार्मूला है वो है अनसॉल्व्ड पेपर। जब हम अनसॉल्व्ड पेपर की बात करते हैं तो उसमें दोनों चीजें आती हैं, प्री के अनसॉल्व्ड पेपर और मेंस के अनसॉल्व्ड पेपर। आप देखिए, आप देखेंगे कि नहीं, सिलेबस में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यस, कृषि है तो किसान है, इंपॉर्टेंट है। फिर जब आप अनसॉल्व्ड पेपर पर जाते हैं तो आपको दूसरे क्वेश्चन का उत्तर मिल जाता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते हैं कि प्री में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, 100 में से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब 2-3%। फिर जब आप जनरल स्टडीज में जाते हैं तो जनरल स्टडीज में जाने के बाद आपको पता लगता है कि जनरल स्टडीज का जो थर्ड पेपर है, यानी टोटल तो फोर्थ कहलाएगा, एक ऐसे का हो जाता है, लेकिन मैं यहां जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4 को लेकर के चलता हूं सुविधा के लिए। तो जनरल स्टडीज का थर्ड पेपर जो आपके इकोनॉमी पर बेस्ड पेपर होता है, उसमें आप देखें कि हर साल लगभग मिनिमम 10% मार्क्स केवल किसानों पर होते हैं। 250 नंबर का आपका पेपर होता है तो 25-30 नंबर के क्वेश्चंस किसानों पर पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चंस की जो संख्या होती है वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तब आपको लगेगा कि नहीं, अगर इतने 10% पूछे जा रहे, एक पेपर का 10% क्वेश्चंस इससे आ रहे हैं, इस टॉपिक से आ रहे हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये दूसरे का उत्तर मिल गया। फिर आप जब उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि इस क्वेश्चंस में किस किस एंगल से पूछा गया है, तब आपको फटाफट वो एंगल समझ में आ जाएगा, वो एंगल्स समझ में आने लगेंगे। अच्छा, तो ये जो है ना एपीएमसी लॉ के बारे में पूछा गया है, किसानों के शोषण के बारे में पूछा गया है, किसानों की गरीबी के बारे में पूछा गया है, किसानों के आत्महत्या करने की स्थितियों के बारे में पूछा गया है, किसान क्यों वहां खेती छोड़ करके आ रहे हैं इसके बारे में पूछा गया है, सरकार क्या क्या कदम उठा रही है इसके बारे में पूछा गया है, इस तरह के प्रश्न आपको वहां मिलेंगे। जब आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे तब आप उसमें से एक इम्प्रेशन निकालेंगे, और इम्प्रेशन ये होगा कि किसानों से जुड़ी दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली तो यह कि किसान के सामने आज कौन कौन सी समस्याएं हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा फिर यह कि किसानों के इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है, दूसरा। तीसरा, ठीक है सरकार तो ये कर रही है, फिर अब आप और क्या चाहते हैं कि और किया जाए? आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप और क्या स्टेप्स लेंगे? ये आपकी अपनी ओरिजिनल थिंकिंग हुई, तो वहां से आपको एंगल मिल जाएगा कि अच्छा आपको इस एंगल से तैयारी करनी है। तो जब आपको ये एंगल मिलेगा तो फिर अब आप इसको न्यूज पर अप्लाई कीजिए। देखिए मैं फिर से न्यूज पर आता हूं। न्यूज में क्या क्या सुना आपने, जो न्यूज में आ रही है ना, न्यूज में आने का मतलब है कि उसको पूरे देश को बताया जा रहा है ना, जैसे कि एनसीईआरटी की किताबें पूरे देश को पढ़ाया जा रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी चाहिए। तो न्यूज में पूरे देश को बताया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि सरकार ये मानकर चल रही है कि ये बातें पूरे देश को पता चलनी चाहिए। तो एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को भी पता चलनी चाहिए, यही तो जनरल नॉलेज है। तब फिर आपको लगेगा कि नहीं, इंपॉर्टेंट तो है। तो क्या क्या खबरें थी, जैसे मैं आपको पॉइंट्स उसके थोड़े कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं, न्यूज को याद करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों ने न्यूज सुना होगा, कृषि क्षेत्र से हमने बिचौलियों को खत्म किया, यह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बिचौलियों को खत्म करने की कोशिश की है। सीधे सीधे एक प्रश्न बन सकता है, अभी तक कृषि क्षेत्र का जो सबसे बड़ी समस्या थी वो बिचौलियों की उपस्थिति, जिसके कारण किसानों को लाभ नहीं होता था और न उपभोक्ताओं को लाभ होता था। सरकार ने इसको खत्म करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? क्या आप इससे सहमत हैं कि सरकार ने इसे खत्म कर दिया है, या सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो कितने सही हैं, वो कितने कारगर सिद्ध होंगे? इस तरीके से उसको एनालिटिकल फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाएगा। बिचौलियों को खत्म करने की बात कही उन्होंने, और इसी के तहत उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही थी वो ई मार्केट की बात कही थी, नेशनल मार्केट जो उन्होंने कहा है। अब आप देखिए कि फिर दूसरी बात क्या थी, उसमें सेकेंड पॉइंट क्या था कि 2022 तक दुगुना कर दिया जाएगा। यह भी प्रश्न बन सकता है कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने के प्रति अपनी वचनबद्धता सिद्ध की है, कि क्या आपको लगता है कि यह संभव है? इसके लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए, एक प्रश्न बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, सब एक ही से रिलेटेड। आप देखिए है ना, किसानों की क्या समस्याएं और सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, सब उसी जो अगर आपने इस टॉपिक की तैयारी कर ली है तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आप आंसर दे देंगे, आपको अलग से कुछ बहुत तैयारी करने की जरूरत नहीं है। फिर प्रधानमंत्री जी के किन स्टेटमेंट को न्यूज ने लिया, हमने कृषि सिंचाई क्या की योजना बनाई, हमने फसल बीमा योजना बनाई, हमने ई मार्केट इस्टेब्लिश किया, हमने किसानों के लिए रोजगार का इंतजाम किया, ये सारी चीजें उसमें उन्होंने दी, कौशल विकास के लिए हमने काम किया, ये सारी बातें उन्होंने कही, ये किसानों से रिलेटेड हो गई। इसका मतलब है कि किसानों के ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसी न्यूज में देखिए कुछ दूसरी चीजें थी, जैसे अभी मैंने कौशल विकास की बात कही, तो स्किल डेवलपमेंट तो एक अलग से पूरा टॉपिक है, और चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये तो सीधे सीधे मेक इन इंडिया से जुड़ा हुआ है, सरकार का बहुत ही एम्बिशियस प्लान है, बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है और बहुत जरूरी स्टेप भी है, तो इस पर तो आपकी तैयारी अलग से होनी ही चाहिए। फिर उन्होंने एक बात और न्यूज में ली थी, वो है सरकार ने कहा है कि हमने पुराने लगभग 1200 कानूनों को खत्म किया है, 1200 पुराने कानून, उसमें कुछ कानून तो 100-150 साल पुराने थे, तो ये जो ओल्ड लॉ है, जो हमारे कानून है, इन पर भी एक छोटी सी टिप्पणी 100-150 शब्द की बनती ही है, तो इनकी क्या उपयोगिता, कि क्या ये रिलेवेंसी थी, क्या किस तरीके से ये फालतू के बोझ बने हुए थे, क्या और भी कुछ ऐसे कानून है जिन्हें खत्म किया जाना चाहिए या जिन्हें बदला जाना चाहिए, जैसे आईपीसी की धारा के बारे में कहा जाता है कि ये तब के बने हुए हैं, 125 साल पुराने हो गए, क्या इनमें बदलाव की जरूरत है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बदलाव की जरूरत है, तो इस तरह के कुछ और हैं, तो आप एक क्रिटिकल तैयारी कर लीजिए, एनालिटिकल तैयारी कर लीजिए कि ऐसे और कौन से कानून हैं जो एक्शन में हैं लेकिन पुराने हैं, और सही बात है कि उनको उनमें भी परिवर्तन किया जाना चाहिए, तब जाकर के इस टॉपिक पर आपकी तैयारी हो पाएगी। तो मित्रों, ये मैंने एक न्यूज को आधार बनाकर आपको कैसे अपनी तैयारी को अंजाम देना चाहिए ये मैंने बताने की कोशिश की है। इसके बाद दोस्तों, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें नहीं थी, एक थी कि आपको मालूम है कि पुदुचेरी में उपराज्यपाल होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जो हमारी फर्स्ट महिला आईपीएस अधिकारी रही हैं किरण बेदी जी, उनके परिचय की जरूरत नहीं है, आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनको वहां का उपराज्यपाल बनाकर भेजा गया है। और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। और इससे पहले आपको मालूम होगा कि अभी जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी जी को अपना एक तरह से सीएम कैंडिडेट घोषित भी किया था। नो डाउट कि किरण बेदी जहां भी रही हैं, जिन जिन पदों पर भी रही हैं, उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव स्टेप्स उठाए हैं, बहुत ही सक्षम प्रशासक मानी जाती हैं। पूरे देश ने मुक्त कंठ से हमेशा उनकी सराहना भी की है, तो इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि उपराज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति एक बहुत ही सराहनीय और सही कदम है। मित्रों, न्यूज से इतना ही। न्यूज़पेपर्स पर मैं आता हूं। कुछ न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स हैं, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोगों को, आप लोग उसे देख लेंगे, मैं उसकी चर्चा अलग से नहीं कर रहा हूं। मैं एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगा मित्रों कि जो भी आपको न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं उसमें स्पेशली जो इंग्लिश की क्लिपिंग्स होती हैं उसमें से जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं वो हम लोग करेंट कंटेंट में उसका हिंदी रूपांतरण करके डालते हैं। आर्टिकल का ज्यों का त्यों ट्रांसलेशन नहीं होता है, हम लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते। उसका जो की पॉइंट है केवल वही हम चाहते हैं कि आप लोगों के ध्यान में आए, ताकि आप गफलत में ना आए, फालतू के उलझे नहीं, वही चीज आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टली क्लियर बैठ जाए। इसी लिहाज से हम लोग बहुत छोटे से हिस्से में आपको उसे प्रोवाइड करते हैं, तो जो करंट कंटेंट वाला हिस्सा है उसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले अपने सभी मित्रों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, पूजा राजपूत प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, अभिषेक साहू भोपाल से हैं, पूनम रानी, राखी तिवारी, अभिषेक पांडे इलाहाबाद से हैं, राजा रघुवंशी, अमरेश कुमार मलकानगिरी उड़ीसा से हैं, दीपिका दुबे, निम्बाराम पाली राजस्थान से हैं, राकेश कुमार झा मधुबनी बिहार से हैं, दिव्या आंध्र प्रदेश से, सौम्यता भारद्वाज वाराणसी से और सूरज राजपूत, आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आप सबकी अनुमति चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।